झूलन यात्रा हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना है, जिसमें राधा और कृष्णा राजधाम में इंदोल लीला करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब है कोई मतलब नहीं है, राधा और कृष्ण सुखी है, वो ही है। सब वेद पुराण महाभारत रामायण वेदांत सूत्रों का यही तात्पर्य है कि राधा और कृष्ण एक साथ सुखी है ब्रजधाम में, और इनके साथ सब ब्रज साकार और साख्यम युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राणमो जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मो। तो सब ब्रजवासियों श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और इसी प्रकार राधा कृष्ण और सब साखा साथियों पूर्ण परमानंद पूर्णानंद अनुभव करते हैं। तो राधा कृष्ण सुखी है और सब भक्तों भी सुखी है। राधा कृष्ण सेविया है, और भक्तों का मतलब सेवक, भक्ति का अन्य नाम है सेवक। तो ब्रज धाम है, गोलोक धाम है, झूलन यात्रा हिंदोला लीला सदैव चलते, और ये भौतिक जगत में धराथल में भी हम झूलन यात्रा उद्यापन करते हैं। हम जो कहते हैं हम नवीन है भक्ति में, और भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के नित्य पार्षद जो सदैव शिव सुख अनुभव करते हैं, वे प्रवीण है कृष्ण की भक्ति में। राधा कृष्ण सेविया है और शुद्ध भक्तों सेवक है। सेवियर सेवक आदान प्रदान करने में भक्ति होती है, प्रेम प्रेम प्रकट होता है, रस भाव होते हैं। तो हम भी भक्ति करते हैं, और वो भक्ति जो हम धरातल में करते हैं वो सब तैयार होने के वो ब्रज धाम में प्रवेश करने के लिए। भक्ति का सूत्र है कृष्णाते अखिल चेष्ट, अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं हम करते केवल यही उद्देश्य कि सब कुछ जो हम करते बोलते सोचते सब प्रयास जो हम करते हैं तो केवल श्री श्री राधा कृष्ण का पूर्ण सुख के लिए, वो ही हेतु। तो हम अनादिकाल से भौतिक जगत में हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेषा, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु मिलते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सुखी होने चाहते हैं, उस सुख जो हम अनुभव करने चाहते हैं भौतिक जगत में वो भौतिक सुख है, इंद्रिय सुख, और शुद्ध वैष्णव कृष्ण के नित्य पार्षद राजवासियों जो सदैव सेव सुख में तन्मय रहते हैं, सदैव कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके हृदय में कुछ इंद्रिय सुख की इच्छा कुछ भी नहीं। भौतिक इंद्रिय सुख अनुभव करना वो ही संसार का मूल कारण है। तो हम जो ये भौतिक जगत में हम जो भक्ति कहते हैं, हम कहते हैं हम वो भक्ति जो हम कहते हैं उसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना का मतलब कि हम सब नियम समृद्धि सब विधि निषेध हम पालन करते हैं कृष्ण की सेवा में। ब्रजधाम में वो कुछ नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी भक्त अपना स्वभाव से सब कुछ करते हैं कृष्ण का सुख के लिए। शुद्ध भक्तों का मन में कृष्ण का सुख के अलावा कोई भी चिंतन कभी भी नहीं आता। उनका स्वभाव वैसा है कि वे सब कुछ करते हैं कृष्णार्थ ही अकेला चेष्ट, सब कुछ जो वे करते हैं कहते हैं वह कृष्ण का सुख का हेतु से करते हैं। और हम जो बद्ध जीव का मतलब हम भौतिक संसार में हैं और हम यहाँ पर है, हम बद्ध हैं क्योंकि हम राधा कृष्ण सेवा चढ़ के भौतिक संसार में आया इंद्रिय तर्पण करने के लिए। तो हम जो साधक है, जो साधना भक्ति जो हम करते हैं और राधा कृष्ण की सेवा करने में हम सेवा सुख मिलते, परंतु मन में और भी इच्छाएं हैं। चूंकि अनादिकाल से हम 84 लाख जीव जाति में प्रयास किया इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो भक्ति जो हम कहते हैं वो शुद्ध नहीं है, वो मिश्रित है। मिश्रित है इसी प्रकार कि हमारे मन में कुछ उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना और कुछ उद्देश्य भी है इंद्रिय तर्पण के लिए। तो इसलिए साधना भक्ति में कुछ नियम पालन करने चाहिए जिससे हम इंद्रिय सुख से दूर रहेंगे। 4 मुख्य नियम है मांस और सभी प्रकार का आमिषाहा का मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन वो सब वर्जित है, और अवैध स्त्री पुरुष संग वर्जित है, और किसी प्रकार का नशा लाना पूरा वर्जित है। तो ये सब नियम पालन करने से हम किसी प्रकार के महापाप नहीं कर सकते, परंतु मन में वो इच्छा जो अनादिकाल से हृदय में जोड़ से स्थित है वो इंद्रिय तर्पण के लिए, उसको निकालना कठिन है। तो इसलिए यदि हम वो सब मांस भोजन शराब वो सब लेना वो सब चलते हैं, तो फिर भी वो इंद्रिय सुख की इच्छा अन्य प्रकार प्रकट हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दे कि भक्ति में लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण ये सब सूक्ष्म रूप में भौतिक इच्छाएं जो है वे भी वर्जित होना चाहिए, वो ही कठिन। आप सब जो पुण्यशाली है इसलिए आप सब यहाँ ही है, नहीं आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप सब पुण्यशाली हैं। तो पापी पापी लोग तो मंदिर नहीं आते, और यदि पापी लोग आते मंदिर तो पुण्यदान हो जाते। तो आप सब पुण्यशाली लोग हैं, इसलिए आप कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं, आप सामान्य व्यक्तियों नहीं हैं। और भारतीय प्राचीन संस्कृति में लोग जो उच्च कोटि वंश में जन्म लेते हैं, वे तो स्वभाव से उनकी संस्कृति से तो मांस भोजन नहीं करते। तो गुजरात में ऐसा था ना, एक दो पीढ़ी पहले था, तो बहुत कम थे लोग जो किसी प्रकार का मांस मछली अंडा खाते थे, बहुत कम थे। वो ऑमलेट वो सब चीज तो नहीं था। अभी तो मोटा बाजार में नानी बाजार में सब मिलते नहीं ऑमलेट और क्या नॉन वेज, तो पहले नहीं था। तो वो आपकी संस्कृति वैसे है कि वो सब नहीं लेना, और शराब पीना है तो वो तो एकदम नीच लोग के लिए। आज का वो तो जमाना अलग हो गया, परंतु फिर भी आप जैसे पुण्यशाली लोग तो वो सब चीजों स्पर्श नहीं करते। तो आपके लिए वो सब चरण सरल, और खास जो वृद्ध है जैसे मनोरमा नाथ जी है और देवयानी नाथ जी है, तो लगते तो पूरे जिंदगी में ऐसे चीज तो कभी भी स्पर्श नहीं किया, वही संस्कृति है, संस्कृति थी। तो आपके लिए वो सब बहुत नीचा अभ्यास, मांस भोजन शराब पीना, आपके लिए वो सब चरण कठिन नहीं है, या आप तो कभी भी नहीं किया। परंतु हृदय में सूक्ष्म रूप में भौतिक आसक्ति है, वो सब निकालना और कठिन है। इसलिए हमें साधना भक्ति करनी चाहिए। केवल शाकाहारी होने से कृष्ण भक्ति नहीं होती है। जैन भी शाकाहारी है लेकिन कृष्ण भक्ति तो नहीं करते। जैन धर्म में वो कृष्ण भगवान के बारे में विचार जो है तो मैं नहीं कहूंगा, वैष्णवों के लिए उचित नहीं है सुनना जो वे कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, और अपराध है जो वे बोलते हैं। तो शाकाहारी होने से तो कृष्ण भक्ति नहीं होते। प्रभुपाद इस विषय के बारे में प्रभुपाद बोले कि कबूतर भी शाकाहारी है लेकिन साधु तो नहीं है, और बंदर भी शाकाहारी है और बड़ा ऋषि जैसे है बंदर, तो जंगल में रहते हैं और कुछ कपड़ा नहीं पहनते तो बड़ा ऋषि जैसे है वैसे, तो लेकिन ऋषि तो नहीं है, बंदर तो बंदर है। बंदर तो जंगल में रहते हैं और कुछ कपड़ा भी नहीं पहनते हैं और शाकाहारी है और शराब भी नहीं पीते, और ऋषियों भी वैसे होते, लेकिन ऋषि और बंदर में बहुत बड़ा अंतर। तो सब सूक्ष्म भौतिक आकर्षण निकालने के लिए वो सख्त भक्ति करने चाहिए। सब जो मंदिर रखते हैं तो श्री श्री राधा गिरिधारी का बहुत ही सुंदर विग्रह दर्शन करने से आकृष्ट होते, तो श्रवण करने से वो आकर्षण कैसे होता है हम समझ सकते हैं कि हम वो एक उदाहरण है कि उस साड़ी का दुकान में वो मूर्ति होते नहीं, मूर्ति तो नहीं है, प्रतिमा है, नारी का प्रतिमा, वो उसका साड़ी पहनना है, लेकिन उससे हम किसी दिव्य आकर्षण नहीं मिलते। राधा जी का श्री मूर्ति, मतलब राधा गिरिधारी जो यहाँ है मंदिर में, उनके दर्शन करने से हम दिव्य आनंद अनुभव करते, ऐसे होते नहीं। और वो प्रतिमा जो साड़ी का दुकान में है, तो उसका देखने से क्या क्या महसूस होते, वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि श्री श्री राधा गिरिधारी प्रतिमा नहीं। और इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात गजेंद्रानंद। श्री श्री राधा गिरिधारी तो प्रतिमा है, हम ऐसे बोल सकते प्रतिमा है, परंतु साधारण रूप नहीं है, वही राधा कृष्ण है। और इनकी हिंदू सेवा जो हम करते हैं, वो साक्षात राधा कृष्ण की सेवा है। तो श्रवण करने से हम समझ सकते हैं कि ये राधा कृष्ण सेवा करना तो खाली मंदिर आने का समय नहीं होना चाहिए, हमें व्रज धाम में प्रवेश करना चाहिए। व्रज धाम क्या है? एक विशाल मंदिर है। मंदिर शब्द का अर्थ क्या है? मंदिर शब्द का अर्थ है वो स्थान जिसमें राधा कृष्ण उपस्थित है और सब सेवक एक साथ सहयोगिता करते हैं राधा कृष्ण की सेवा का, वही मंदिर शब्द का अर्थ है। तो व्रज धाम एक विशाल मंदिर है, क्योंकि व्रज धाम में राधा कृष्ण उपस्थित है और सब भक्त सब सखा साखिया तो एक साथ सहयोगिता करते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना। तो ये मंदिर जो है ये भौतिक जगत के बीच में एक नमूना है वो व्रज धाम का। और यहाँ पर सब प्रशिक्षण मिल सकते हैं जिससे वे योग्य होंगे वो व्रज धाम में प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ आप आते हैं श्रवण करने के लिए और हिंदू सेवा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो यही सब अभ्यास है जिससे हम पूरा तन्मय होंगे कृष्ण सेवा करने को, जिससे कोई दूसरी इच्छा हृदय में नहीं रहे, केवल यही इच्छा रहेगी। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध अवस्था क्या है? राधा कृष्ण प्राणमो युगल किश जीवने मरणे गति आर नहीं मो। तो ये झूलन यात्रा का अर्थ है। अर्थ क्या है? राधा कृष्ण सुखी है और राधा कृष्ण के सेवकगण सब सुखी। वो सेवा, वो सुख क्या है? सेवा सुख, इंद्रिय सुख नहीं है। और वो झूलन यात्रा महोत्सव जो सब वैष्णव मंदिर में पालित होते हैं वो अभ्यास है, वो नित्य धाम वृंदावन धाम है प्रवेश करने के लिए। तो बोला था अभी कि मंदिर शब्द का अर्थ वो स्थान जिसमें राधा कृष्ण उपस्थित है और उनकी सेवा होती है, तो शिव मंदिर भी है और गणेश मंदिर भी है, अलग अलग मंदिर होते हैं, परंतु मूल मंदिर है राधा कृष्ण। सब देवी देवीगण भगवान विष्णु के सेवक, और वे सेवा ग्रहण करते हैं ऐसे लोग से, और ऐसे लोग जो पूरा स्वीकार नहीं करते हैं राधा कृष्ण प्राणमो जो गल किशोर जीवने और अनेक अति आर नहीं। तो आजकल अलग प्रकार का मंदिर है जिसका जिसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है वेद शास्त्र में। गुजरात में एक प्रकार है स्वामीनारायण मंदिर जिसमें वो झूला यात्रा करते है स्वामीनारायण का, वो विचित्र है नहीं। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। क्या है वो वैष्णव धर्म का अनुकरण करते, वास्तव में ऐसे लोग तो शाकाहारी होते हुए भी और शराब पीने वाले नहीं है, परंतु उनके दिल में बहुत बड़ा द्वेष है राधा कृष्ण के विरुद्ध। इसलिए वो राधा कृष्ण को निकाल के वो स्वामीनारायण का जिला यात्रा करते हैं। तो वो सब अधर्म है, धर्म का नाम है अधर्म, जो कलयुग में प्रचलित बहुत। और चूंकि लोग कलयुग में लोग की बुद्धि बहुत कम होते, विशेषकर आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होते, उसका लक्षण है कि आध्यात्मिक बुद्धि कम होते। तो किसी युवक से यदि हम पूछेंगे रास्ते में बाला दिव्या आ जाए, लेकिन सब युवक युवती का कुछ भी ज्ञान नहीं है भगवद गीता के बारे में और कैसे पुनर्जन्म होते हैं, ये सब विषय के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और भगवान कौन है इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। इसलिए वो साई बाबा पूजा जो बहुत प्रचलित है आज का, वो चलते कैसे संभव है वास्तविक ज्ञान का अभाव से, और कलयुग का प्रभाव है। तो साई बाबा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है किसी शास्त्र में, स्वामीनारायण के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब चलते कलयुग का प्रभाव से। तो कलयुग का प्रभाव हटाने के लिए, लोग का कल्याण के लिए दो मुख्य उपाय है। एक है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करना, और दूसरा है कृष्णे स्वधाम फलते धर्म ज्ञान आदि सा फलो नष्ट तेषामेष पुराणार्थोधनोदिता। भगवान श्री कृष्ण द्वापरयुग का अंतिम क्षण है अपने धाम गोलोक धाम लौटे गए। अंतिम क्षण मतलब भगवान कृष्ण का वहा गोलोक धाम जाने के साथ द्वापरयुग अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हो गया। तो भगवान कृष्ण धर्म की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, और सब सद्गुण की मूर्ति है। भगवान कृष्ण चले गए तो कैसे कलयुग में लोग धर्म ज्ञान और किसी भी सद्गुण मिलेंगे, कैसे संभव हो। तो भगवान कृष्ण कलि युग में उपस्थित है कैसे, इनके नाम के रूप में, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हुए सर्व जगत निष्ठा, और ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में। और कलि युग में लोग जो कलि युग का प्रभाव से अंध जैसे, मतलब आध्यात्मिक प्रकाश कुछ भी नहीं मिलते, मिलेंगे श्रीमद् भागवत का रूप में से। कलयुग का घर अंधेरे में, श्रीमद् भागवत सूर्य रूपी है, इसलिए खलो नष्ट दृशा में सब पुराना भगवान होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का उदय है, भगवान कृष्ण चले गया पूरा अंधेरे आ गए, लेकिन अंधेरे निकालने के लिए सूर्य रूपी श्रीमद् भागवत का उदय हो गया। तो भद्र मास में विशेषकर श्रीमद् भागवत का वितरण होने चाहिए। पहले बोला था कि आप सब पुण्यशाली है, इसलिए आप यहाँ आए हैं झूलन यात्रा में और श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा में अंश ग्रहण करने के लिए, और झूलन यात्रा के बारे में कुछ हरिकथा श्रवण करने के लिए। तो हरिकथा श्रवण कीजिए आप यहाँ आए, और अपने घर में भी आप श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए। श्रवण और कीर्तन से आपका आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। सेवा करने चाहिए, और सेवा का आधार है श्रवण और कीर्तन, विशेषकर श्रीमद् भागवत। कलयुग में सबका श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, और विशेषकर भद्र मास में जो जिनके पास श्रीमद् भागवत नहीं है उनको देना है, और जो जिनके पास नहीं है तो लेना ही है। श्री शिल प्रभुपाद की कृपा से और इनके भक्तों की कृपा से वो श्रीमद् भागवत जिसका अर्थ बहुत गहरा है अभी उपलब्ध है पृथ्वी की सब मुख्य मुख्य भाषाओं में, सारा रूप में वो सब सूक्ष्म अर्थ की व्याख्या है, गुजराती में भी उपलब्ध है। वो पूरा सेट का दाम है 6,000, कितना 5,000 रुपये सिर्फ, हिंदी में 6,000, इंग्लिश में 5,000 6,000। तो 5,000 रुपया तो कुछ पैसा है, लेकिन ऐसा अगर किसी शादी की व्यवस्था होते तो कम से कम कितना, कम से कम सबसे गरीब लोग तो कम से कम 5,00,000 लोग 5,00,000 रुपया डालता है उसमें। तो 5,000 क्या है, 5,000 रुपये से आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण हो जाएगा। आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करने से आप दिव्य आनंद अनुभव करेंगे, आप भगवान कृष्ण का पूर्ण आशीर्वाद मिलेंगे। और यदि आप प्रतिदिन अभ्यास शास्त्र अभ्यास नहीं करेंगे तो केवल घर में रखने से आपका घर इतना पवित्र हो जाएगा। शास्त्र में यही लेख है कि जिनके घर में श्रीमद् भागवत है तो देवगण आते हैं श्रीमद् भागवत की पूजा करने के लिए। तो आप यदि श्रीमद् भागवत घर में रखना है तो आपको किसी भी देव देवी की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है, देव देवी गण आपकी पूजा करने के लिए आएंगे, वो ही है, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत को मानते हैं। तो कितना महान है श्रीमद् भागवत, इसलिए हमारा अनुरोध है, तो जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म तो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति से सफल हो जाएगा, आप श्रीमद् भागवत का पुरस्कार ले जाए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि कृष्ण भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, आपका जीवन में और कुछ भी प्राप्त करने का और नहीं रहेगा, वो ही जीवन की उत्तम संस्कृति है। हरे कृष्ण।